नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का एक उद्बोधन है, तीर्थ यात्रा का उद्देश्य। हम अक्सर सोचते हैं ना कि तीर्थ यात्रा मतलब चलो पाप धुल जाएंगे, कुछ पुण्य कमा लेंगे।
हाँ, ये आम धारणा तो है ही।
पर क्या ये बस इतना ही है? मतलब कुछ जगहों पर हो आना, कुछ रस्में कर लेना। पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं कि इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है, कर्म से जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल।
तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सच्चा प्रायश्चित क्या होता है और तीर्थ यात्रा असल में होनी कैसी चाहिए, जैसा गुरुदेव ने बताया है। वो आम्रपाली और अंगुलीमाल के उदाहरण भी आते हैं इसमें।
जी, उन्होंने सिर्फ पछताया नहीं, कर्म करके दिखाया।
तो इसी पर आज बात करते हैं।
हाँ, और देखिए, सबसे अहम बात जो गुरुदेव कहते हैं वो ये कि सिर्फ मंत्र जप लिया, पूजा कर ली या मंदिर में जाके नाक रख ली, इससे न तो पाप कटते हैं न ही कोई आध्यात्मिक उन्नति होती है।
अच्छा
जी, असली प्रायश्चित मतलब वास्तविक बदलाव के लिए दो चीजें एकदम जरूरी हैं। पहला, अंशदान।
अंशदान?
हाँ, मतलब अगर आपने अनीति से, गलत तरीके से धन कमाया है तो उसको अच्छे कामों में लगाना, समाज सेवा में देना। और दूसरा है समयदान, यानी अपना समय, अपनी मेहनत, अपनी ऊर्जा समाज की भलाई और ज्ञान फैलाने में लगाना।
तो जैसे आपने आम्रपाली और अंगुलीमाल का नाम लिया, उन्होंने ये कैसे किया, मतलब अंशदान और समयदान दोनों?
हाँ बिल्कुल। देखिए, दोनों के पास अपार संपत्ति थी, पर वो आई कैसे थी? कहीं ना कहीं पाप कर्म से, अनीति से जुड़ी थी।
जी,
तो उन्होंने क्या किया, अपनी सारी संपत्ति समाज के लिए दान कर दी। जैसे बुद्ध विहार बनवाए, धर्म ग्रंथों का अनुवाद करवाया, ये हुआ अंशदान।
ठीक है,
लेकिन गुरुदेव कहते हैं ये काफी नहीं था। उन्होंने अपने कामों से समाज को जो नुकसान पहुंचाया था उसकी भरपाई भी तो करनी थी।
हाँ, सही बात है।
तो उन्होंने अपना बाकी का जीवन ही बदल दिया। वो संत बन गए, गांव गांव गए, पैदल घूमे, लोगों को सही रास्ता दिखाया, ज्ञान दिया, अच्छे कर्म करने को कहा। यह है समयदान, अपने जीवन का बचावा हिस्सा लगाकर उस नुकसान की भरपाई करना।
अच्छा, तो मतलब गुरुदेव प्रायश्चित को सिर्फ एक व्यक्तिगत एहसास या भावना से ऊपर उठाकर एक सामाजिक जिम्मेदारी, एक तरह की क्षतिपूर्ति का काम बना रहे हैं कि भाई हाथ जोड़ने या डुबकी लगाने से ज्यादा जरूरी है कुछ ठोस करना।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम यही बात है। गुरुदेव के लिए बिना अंशदान और समयदान के प्रायश्चित बस एक खाना पूरी है, एक रस्म अदायगी। और तीर्थ यात्रा का जो असली उद्देश्य है वो इसी सक्रिय प्रायश्चित की भावना से जुड़ा है। वो सिर्फ घूमना फिरना पर्यटन नहीं है।
तो फिर क्या है, मतलब अगर ये आजकल की जो फटाफट वाली यात्राएं होती हैं वो नहीं है, तो पूज्य गुरुदेव के अनुसार सच्ची तीर्थ यात्रा का स्वरूप कैसा है?
देखिए, पूज्य गुरुदेव से कहते हैं धर्म प्रचार की पदयात्रा।
पदयात्रा?
हाँ, पैदल यात्रा। इसमें तीन चीजें मुख्य हैं। पहला, जनसंपर्क। आप जहां जा रहे हैं वहां लोगों से मिलें, बात करें, उनका सुख दुख जानें।
ठीक है।
दूसरा, पदयात्रा, पैदल चलने का कष्ट सहना, ये एक तप है। और तीसरा, सबसे जरूरी, धर्म प्रचार, लोगों में अच्छे विचार फैलाना, ज्ञान देना, सदाचार की बात करना।
अच्छा,
पुराने जमाने में जो लोग प्रायश्चित करते थे वो यही करते थे, अपनी गलती मानते थे और फिर दूसरों को सही राह दिखाते थे। जैसे कांवर यात्री होते हैं, वो रास्ते भर ज्ञान की, भजन की बातें करते चलते हैं। तो ये ज्ञान और सेवा को लोगों तक ले जाने का एक सक्रिय तरीका है।
तो एक तरह से तीर्थयात्री खुद एक समाज सुधारक या शिक्षक बन जाता है। वो सिर्फ अपने लिए पुण्य कमाने नहीं निकला, बल्कि समाज को कुछ देने निकला है। ये तो हुई बाहरी बात, लेकिन क्या गुरुदेव अंदरूनी बदलाव मतलब आत्म सुधार पर भी कुछ कहते हैं?
हाँ बिल्कुल। तीर्थ यात्रा के दो बहुत महत्वपूर्ण भीतरी पहलू भी हैं। एक है मुंडन संस्कार।
मुंडन?
हाँ, पर इसका मतलब सिर्फ बाल कटवाना नहीं है, ये एक प्रतीक है, अपने पुराने बुरे विचारों, गलत आदतों, संस्कारों को त्यागने का प्रतीक। जैसे सिर के बाल हटाकर एक नई साफ शुरुआत का संकल्प लेना।
अच्छा, एक प्रतीकात्मक शुद्धि।
जी। और दूसरा है तीर्थ स्थान पर कुछ समय रुकना, जिसे कल्पवास भी कहते हैं। वहां रहकर साधना करना, तप करना, अच्छे लोगों का संग करना, यानी सत्संग, इससे आत्म परिष्कार होता है।
जैसे प्रयाग में माघ मेले में लोग कल्पवास करते हैं।
बिल्कुल, वो उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। लोग वहां एकांत में रहते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, चिंतन करते हैं और लोक कल्याण के बारे में सोचते हैं।
तो संक्षेप में अगर कहें तो पूज्य गुरुदेव की नजर में तीर्थ यात्रा एक पूरी प्रक्रिया है, बाहर से देखें तो समाज सेवा और ज्ञान का प्रसार, और अंदर से देखें तो अपनी शुद्धि और एक नया संकल्प। ये सिर्फ घूमना नहीं बल्कि खुद बदलना और दूसरों को बदलने में मदद करना है।
आपने बिल्कुल सही समझा, यही सार है। और ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ पारंपरिक तीर्थों पर ही लागू नहीं होता।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में जो जाने अनजाने गलतियां करते हैं या जो कमियां रह जाती हैं, उनका प्रायश्चित कैसे करते हैं। क्या हम सिर्फ मान लेते हैं या अफसोस कर लेते हैं और बस, या सचमुच गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलकर अंशदान और समयदान के जरिए उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं।
हाँ, ये सोचने वाली बात है।
पूज्य गुरुदेव ने कहा है ना, घिनौने भूतकाल को छोड़ करके उज्जवल भविष्य में प्रवेश करना।
जी।
तो यहाँ एक सवाल उठता है हम सबके लिए, आज अपने जीवन में या अपने आसपास समाज में कोई सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हम ऐसा कौन सा छोटा या बड़ा कदम उठा सकते हैं जिसे हमारी अपनी व्यक्तिगत तीर्थ यात्रा की शुरुआत कहा जा सके।
बहुत गहरा विचार है। इसी विचार के साथ आज की बातचीत ही समाप्त करते हैं। नमस्कार।
नमस्कार।